जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरी जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा जय हो जय हो जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी यमुना जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जया कुंज जय राधा माधव जया कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा सब लोग प्रणाम करें जय ओम विष्णु पाद परम हंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमदेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय श्री श्री गौनिताय की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय श्री श्री षण स्वामी वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय श्रीजीव गोस्वामी तिरुभावतिथि महामहोत्सव की जय श्रील जगदीश पंडित तिरुभावतिथि महामहोत्सव की जय गौर प्रेमानंदे All glories to Simple Devotees. All glories to Simple Devotees. All glories to Simple Devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Hare Krishna. तो आज बहुत ही पवित्र दिन है. आज दो महापुरुषों का तिरुभाव है. कौन से हैं वो, कौन बताएगा? श्रील जीव गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है और श्रील जगदीश पंडित का तिरुभाव दिवस है. तो बहुत ही पवित्र दिन है. हम इन दोनों महापुरुषों के विषय में चर्चा करेंगे. तो पहले जीव गोस्वामी के विषय में हम सुनेंगे गौड़ी वैष्णव चरितामृत ग्रंथ से. तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने. ये जो है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के भतीजे हैं जीव गोस्वामी. रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों भाई हैं. इनके भतीजे जीव गोस्वामी, इनमें महापुरुष के समस्त लक्षण थे. शरीर में महापुरुष के शरीर के कुछ लक्षण होते हैं तो वो इनके शरीर में थे. जैसे नेत्र कमल दल के समान. महापुरुष के नेत्र कैसे होते हैं? कमल दल के समान होते हैं. नासिका ऊंची होती है. महापुरुष की नासिका ऊंची होती है और ललाट विशाल होता है, चौड़ा ललाट होता है. वक्षस्थल भी चौड़ा होता है और भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं. जी हाँ, जो है घुटनों तक लंबे होते हैं. हमारे आपके नहीं होंगे, जब खड़े हो जाएंगे तो ये हाथ जो है घुटनों तक नहीं पहुँचेंगे. महापुरुष के भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं और उज्जवल स्वर्णिम देह है, उज्जवल सोने के समान शरीर है ना. किसका है उज्जवल सोने के समान शरीर? किसका है? महापुरुष का होता है. तो ये सब लक्षण जो है श्री जीव गोस्वामी के शरीर में थे, है ना. बचपन की अवस्था में ही इनके पास कृष्ण बलदेव का विग्रह था, कृष्ण बलराम का विग्रह था. अपनी शुद्ध भक्ति के साथ पूजा करते हुए आंसू बहाते थे. छोटा सा बालक और कृष्ण बलराम की जब पूजा करता है तो आंसू बहाता है, प्रेम के आंसू बहाता है. ऐसा प्रेम जो है बचपन में ही इनका. कृष्ण बलराम को वस्त्र पहनाते थे, चंदन लगाते थे, फूलों से सजाते थे, आभूषणों से सजाते थे, स्वादिष्ट मिठाई अर्पण करते थे और तब कुछ स्वयं ग्रहण करते. छोटा सा बालक, सोचिए छोटा सा बालक जो है कृष्ण बलराम की इतनी पूजा करके तब कहीं कुछ खाए और शेष महाप्रसाद अपने सखाओं को वितरित कर देता था, है ना. प्रारंभ से ही जीवों में, जीव के अंदर अन्य जीवों के प्रति दया थी. कृष्ण बलराम के प्रति इतने आसक्त थे कि सोते समय अर्चा विग्रहों को अपने छाती में लगा करके ही सोते, नहीं तो सो नहीं सकते, उनको नींद नहीं आएगी. जब तक कृष्ण बलराम को अपनी छाती में ना लगाए तब तक वो नहीं सोते थे. कृष्ण बलराम को अपनी छाती में लगा करके ही सोते थे. इनके माता पिता सोचते थे कि बच्चे का खेल है, इन खेल नहीं था, ये बहुत गंभीर प्रेम था, है ना. प्रफुल्लित होते, गांव के लोग भी बड़े प्रफुल्लित होते थे कि इतने छोटे बच्चे का इतना प्रेम, कृष्ण बलराम के अर्चा विग्रह में इतना प्रेम कैसे है. पाठशाला में बड़ी जल्दी संस्कृत व्याकरण सीख ली, काव्य न्याय दर्शन सब सीख लिया और श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना शुरू कर दिया बचपन से ही. कृष्ण कथा में आनंद लेते थे. कोई इनसे श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य के किसी विषय में बातें करने का साहस नहीं करता था. इतना तेज था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि दूसरी चर्चा करें. कृष्ण के अलावा कोई दूसरी चर्चा करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी इनके सामने. इन्होंने नित्यानंद प्रभु के साथ में नवदीप धाम का भ्रमण किया. कितने भाग्यशाली नित्यानंद भगवान ने स्वयं इनको साथ में लेकर के अकेले इनके साथ में नवदीप धाम का जो है दर्शन कराया, इनको दर्शन कराया। कितना महत्वपूर्ण बालक। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने लीला समाप्त करके चले गए, नित्यानंद प्रभु फिर भी थे इस पृथ्वी पर। तो जब जीव गोस्वामी गए नवद्वीप में, तो नित्यानंद प्रभु ने स्वयं सब स्थानों में इनको ले जा करके और चैतन्य की लीलाओं बताएं कि यहाँ पर श्री चैतन्य ने ये लीला करी, ये लीला करी, ये सब नित्यानंद प्रभु ने स्वयं बताया, है ना। इसके बाद वाराणसी में संस्कृत का अध्ययन किया और फिर वृंदावन में वास किया। रूप गोस्वामी का पैर जो है धोते थे, रूप गोस्वामी इनके कौन है, चाचा। तो रूप गोस्वामी को जो है उन्होंने इन्होंने अपना गुरु भी स्वीकार किया था, तो रोज उनके चरण धोते थे, उनकी पांडुलिपि तैयार करते थे और ग्रंथों का भी संपादन करते थे, और इस प्रकार से रूप गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त की। एक बार एक वृद्ध वैष्णव वल्लभाचार्य ने रूप गोस्वामी की रचना में कुछ त्रुटि निकाली। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिख रहे थे, तो वल्लभाचार्य आए कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि आपकी कृपा से मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ। तो वल्लभाचार्य ने कहा कि इसमें एक गलती है, रूप गोस्वामी ने लिखा था भुक्ति मुक्ति इस प्रयावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति रसस्य कथम उद्भवो भवेत, कि भुक्ति और मुक्ति की जो इच्छा है अगर ये पिशाची हृदय में है तब तक भक्ति के रस, भक्ति का रस हृदय में कैसे आ सकता है। तो वल्लभाचार्य ने कहा कि आपने भुक्ति को पिशाची कहा ठीक है, लेकिन मुक्ति को तो पिशाची नहीं कहना चाहिए, इसमें त्रुटि है। तो रूप गोस्वामी ने स्वीकार कर ली कि आप सुधार दीजिए। वल्लभाचार्य बोले हाँ मैं सुधार दूंगा। लेकिन बाद में जीव गोस्वामी को जब मौका मिला तो वल्लभाचार्य से उन्होंने विचार रखा कि आपने कैसी उसमें आपने जो मुक्ति को पिशाची कहा है, तो हमारे गुरु महाराज ने मुक्ति को पिशाची नहीं कहा है, हमारे गुरु महाराज ने मुक्ति की इच्छा को पिशाची कहा है, तो आपने हमारे गुरु की रचना में गलती कैसे निकाली। तब वल्लभाचार्य को समझ आया कि अरे ये बच्चा तो बहुत बुद्धिमान है और रूप गोस्वामी की रचना में कोई गलती नहीं है, मैंने गलती की जो उनकी रचना में गलती निकाली। और रूप गोस्वामी ने रूप गोस्वामी के सामने आकर के वल्लभाचार्य ने कहा कि आपकी पुस्तक में कोई गलती नहीं है, इस बच्चे ने मुझे समझा दिया, मैंने गलती निकाली थी, वास्तव में कोई गलती नहीं है। तो रूप गोस्वामी ने जब वो चले गए वल्लभाचार्य, तो रूप गोस्वामी ने वल्लभाचार्य को डांटा। अब देखो ऐसे देखा जाए तो जीव गोस्वामी के साथ कितना न्याय हो रहा है। रूप गोस्वामी के पक्ष में ही उन्होंने वल्लभाचार्य को जो कुछ बताया उससे वल्लभाचार्य भी संतुष्ट हुए और रूप गोस्वामी के सामने जीव गोस्वामी की प्रशंसा भी की और चले गए। अब रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को डांट रहे हैं, जीव गोस्वामी डांट रहे हैं कि तुमने उनके साथ शास्त्रार्थ क्यों किया, तुम वृंदावन छोड़ करके चले जाओ, तुम वृंदावन में रहने लायक नहीं हो, ऐसा कहा। तो नंद घाट की भजन कुटीर में एक मगरमच्छ के गड्ढे में रहते हुए जीव गोस्वामी ने उपवास रख लिया। फिर जीव गोस्वामी ने अपनी कोई कुटिया नहीं बनाई कि गुरु ने मुझे त्याग दिया है तो मैं क्या कुटिया बनाऊं, तो मांगते भी नहीं थे, भिक्षा भी नहीं मांगते थे। वही जमुना जी के जो है किनारे मगरमच्छ ने जो एक गड्ढा बनाया था वहीं पर बैठ गए और जमुना जी कहीं पानी पी लेते थे या कभी मिट्टी खा लेते थे, मांगते भी नहीं थे। अब शरीर भी एकदम खराब हो गया, पूरा पूरे शरीर में जलोदर रोग हो गया, पेट फूल गया और पूरा शरीर जो है एकदम कमजोर हो गया, अब तो मृत्यु की अवस्था में आ गए। तो फिर सनातन गोस्वामी को जब पता चला कि जीव गोस्वामी इतनी बुरी हालत है, तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के बड़े भाई हैं, तो सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी को ले गए और रूप गोस्वामी को समझाया कि आपने इस बालक को इतना कष्ट क्यों दिया। और रूप गोस्वामी ने फिर अपनी गलती स्वीकार की और जीव गोस्वामी को अपनी सेवा में फिर से ले लिया और चिकित्सा कराई, नहीं तो मिट्टी मिट्टी खाने से पानी जमुना जी का पानी पीते थे और मिट्टी खाते थे, तो इनका तो शरीर मतलब छूटने वाला था। रूप गोस्वामी ने फिर इनकी चिकित्सा कराई और इस तरह से फिर से ये सेवा में आ गए। तो प्रभुपाद ने एक बार इस गुरु शिष्य लीला पर अपना मंतव्य प्रकट करते हुए कहा कि रूप गोस्वामी ने हम जैसे आज के भक्तों को शिक्षा देने के लिए जीव गोस्वामी को बाहर निकाला था। रूप गोस्वामी ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको शिक्षा देने के लिए ऐसा कहा, ऐसा किया। ये श्री जीव गोस्वामी जैसे कृष्ण के पूर्णतया नित्य मुक्त पार्षद को पाठ पढ़ाने या दंडित करने के लिए नहीं किया था, रूप गोस्वामी ने समस्त जीवों को ये सिखाने के लिए जीव गोस्वामी को वृंदावन से बाहर निकाला था कि जो उन्होंने उपदेश अमृत में लिखा है कि भक्त को अपनी वाणी के वेग को सहन करना चाहिए और सदैव विनम्र रहना चाहिए। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के तेरह भाव के बाद जीव गोस्वामी नवदीप वृंदावन और जगन्नाथपुरी के समस्त वैष्णवों का पथ प्रदर्शन करने हेतु गौड़ीय संप्रदायाचार्य बन गए, गौड़ी संप्रदाय के आचार्य बन गए जीव गोस्वामी। जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी नहीं रहे तो जीव गोस्वामी ही गौड़ी संप्रदाय के आचार्य बन गए। जितने भी गौड़ी वैष्णव थे, चाहे वो वृंदावन में हो, चाहे जगन्नाथपुरी में हो और चाहे नवदीप में हो, सबके आचार्य कौन है, जीव गोस्वामी हैं। यद्यपि सर्वमान्य अग्रणी थे, सर्वदा समस्त जीवों के विनीत सेवक के समान व्यवहार करते थे। जब भी बंगाली वैष्णव वृंदावन की यात्रा में आते तो प्रेम पूर्वक उनका स्वागत करते। जीव गोस्वामी इतने विद्वान थे लेकिन तो भी कितने विनम्र थे कि बंगाल से कोई वैष्णव आए तो तुरंत उनका स्वागत करते थे और उनके निवास की व्यवस्था करते थे, उनके प्रसाद की व्यवस्था करते थे और ब्रजमंडल परिक्रमा में भी उनको ले जा करके कृष्ण की लीलाओं का दर्शन कराते थे। प्रकांड संस्कृत विद्वान जीव गोस्वामी ने अपने मन में संस्कृत श्लोक रचते थे। जब वो लिखते थे ना श्लोक तो अपने मन में ही वो रचना कर लेते थे श्लोक की। संस्कृत श्लोक लिखना बड़ा मुश्किल है, कोई संस्कृत का श्लोक अगर बनाता है तो पहले लिखता है, फिर अक्षरों की संख्या गिनता है, फिर अक्षरों को बदलता है, शब्दों को बदलता है, बहुत मुश्किल से एक श्लोक की रचना हो पाती है। जीव गोस्वामी इतने विद्वान थे कि मन में ही श्लोक की रचना कर लेते थे और बिना कोई परिवर्तन किए उसे लिखते थे। जब लिखते थे तो उसमें कुछ काटा कुटी नहीं, बिल्कुल वही राइटिंग, कुछ भी कटिंग नहीं होती थी, लिखते थे। और लिखने का अभिप्राय है वे एक धातु की सलाका द्वारा ताल पत्रों पर उत्कीर्ण कर, जैसे कि पत्थर की लकीर हो, पत्थर की लकीर की तरह उनकी जो है लिखनी होती थी कि जो एक बार लिख दिया वही फाइनल, फाइनल प्रूफ वही है जो एक बार लिख दिया। अंकन किस विधि में मिटाने, संपादन करने, पुनः लिखने, मात्राओं को सुधारने की संभावना नहीं होती थी, एक बार लिखा वही फाइनल ना ऐसा। तथापि प्रत्येक श्लोक छंद लय काव्य और अर्थबोध की दृष्टि से परिपूर्ण होता था, है ना। उस समय तो लिखने का जो कार्य है बहुत परिश्रम होता था, आजकल तो बॉल पेन आते हैं, आप लिखते हैं तो वो सूखी स्याही होती है। उन दिनों क्या होता था, दवात और कलम होती थी और कलम को जो है दवात में बोरते थे, स्याही लिखते थे तो बड़े बड़े अक्षर लिखते थे और कागज को जो है आप पलट नहीं सकते क्योंकि इधर लिखी है स्याही, जब तक सूखे नहीं कागज को पलट नहीं सकते तो आप दूसरी तरफ कैसे लिखें। तो जीव गोस्वामी का इतना तेज दिमाग था कि इसका इस तरफ कागज में जो लिखा है अब पीछे जो कुछ लिखना है उनके दिमाग में सब होता था और अगले कागज में लिखते थे वो, और ये कागज सूखने के लिए रख देते थे और जब सूख जाता था तो फिर इसके पीछे लिखते थे, समझ रहे हैं कितना तेज दिमाग था कि इस कागज में इतने श्लोक आए इस पन्ने में इस पेज में और ये अभी सूखने के लिए रख दिया है, अब पीछे जितने श्लोक लिखना है उनके दिमाग में है और अगले पेज में वो लिखना शुरू कर देते थे। अब ये जब ये सूख गया तो फिर ये पीछे का इसमें लिख रहे हैं, इतना दिमाग, इतना तेज दिमाग था इनका, इससे समय बच जाता है। नहीं तो क्या होगा भाई, इधर लिखा, अब स्याही जब तक ना सूखे तो पीछे लिख नहीं सकते, तो खाली बैठे रहेंगे। इतना उनका तेज दिमाग था, है ना। इन्होंने सर्वाधिक ग्रंथों की रचना की है। इन्होंने 500,000 श्लोक लिखे हैं। सोचिए कृष्ण के लीला के 500,000 श्लोक लिखे हैं, है ना। गोपाल चंपू, षट संदर्भ और हरिनाम व्याकरण, ये तीन बहुत प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं। गौड़ी वैष्णव संस्कृत विद्वान जीव गोस्वामी के नाम की ये व्याख्या देते हैं। वास्तव में जीव गोस्वामी का नाम जीव अत्यंत रोचक है। जब भागवत के इस श्लोक की दृष्टि से उस पर विचार किया जाए, अहस्तानी सहस्तानाम अपदानी चतुष्पदाम जीवो जीवस्य जीवनम, जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के भोजन बनते हैं। जिनके हाथ नहीं है, जिन जीवों के हाथ नहीं है, है? तो वे भोजन बन जाते हैं उन जीवों के जिनके पास हाथ हैं, है? और जिनके पैर नहीं है वे जीव उन जीवों के भोजन बन जाते हैं जिनके पैर हैं, है? जीवो जीवर से जीवनम, है? तो लेकिन जीव का एक अन्य अर्थ है वो जो दूसरों को जीवन प्रदान करता है। अतएव जीव गोस्वामी ने अपने 25 ग्रंथों में जो दिव्य ज्ञान दिया है वो सब भक्तों को जीवन प्रदान करता है। जीव जीवर से जीवनम। आचार्य रानी जहानाबाद देवी के अनुरोध पर श्री जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु के माध्यम से अपने लेखों को वृंदावन से बंगाल भेज दिया। इन्होंने उनका बंगाली अनुवाद कर उन्हें बंगाल और उड़ीसा में सर्वत्र वितरित किया। जीव गोस्वामी ने बहुत दूर की दृष्टि से एक बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि उन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे वो संस्कृत भाषा में लिखे थे, और भी जो दूसरे गोस्वामी थे उनके भी ग्रंथ जीव गोस्वामी के ही पास सुरक्षित थे। सोचिए उस समय केवल हस्तलिखित पांडुलिपियाँ होती थी, वही सब कुछ होता था। अगर मान लो वो खो जाए, कुछ खराब हो जाए, तो फिर मिलेगा नहीं कुछ भी। तो जीव गोस्वामी ने क्या किया था, तीन भक्तों को एक बहुत बड़ा कार्य सौंपा। ये जितने भी ग्रंथ हैं जो हाथ से लिखे गए थे, इनकी जो है हाथ से नकल करके और वितरण करना है, पुस्तकें वितरण करना है। पहले छपाई नहीं होती थी, हाथ से लिखी जाती थी। तो एक किताब को हाथ से लिखने में कितने दिन लगेंगे सोचिए, यही किताब है, इस किताब को अगर आप हाथ से लिखें कितने दिन लगेंगे। और पहले बॉल पेन भी नहीं था, कलम और दवात होती थी स्याही, तो फिर और बड़े अक्षर निकलेंगे। बॉल पेन से तो फिर भी काफ़ी छोटे अक्षर हो जाते हैं, है ना, लेकिन कलम से और दवात से तो और भी बड़े बड़े अक्षर बनेंगे। और कितना परिश्रम होगा एक किताब लिखने में। तो समय उन तीन भक्तों ने इन पुस्तकों को बंगाली भाषा में और उड़िया भाषा में भी लिख करके और वितरित किया। कितना परिश्रम, कितना परिश्रम, है ना। अभी तो हमें ये किताबें मिल जाती छपी छपाई, भाई चलो बेचो, बेचना ही है। उस समय क्या था, हाथ से लिखो और तब इनको दो। कितना परिश्रम, ये काम जो है जीव गोस्वामी ने कराया इन भक्तों से, है ना। इन्होंने व्यापक रूप से प्रचार भी किया और हजारों भक्तों को दीक्षा दी। सन 1542 में जीव गोस्वामी ने वृंदावन के सेवा कुंज में राधा दामोदर के पूजन की स्थापना की। इनकी समाधि मंदिर परिसर में विद्यमान है, जीव गोस्वामी की, राधा दामोदर मंदिर के परिसर में। राधा दामोदर की नित्य वृंदावन लीला में जीव गोस्वामी विलास मंजरी हैं। क्या है ये विलास मंजरी हैं, श्री जीव गोस्वामी तेरो भाव तिथि महाभोत्सव की। अब हम सुनेंगे जगदीश पंडित के बारे में, तो आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से। ये चैतन्य भागवत का जो है आदि खंड है और चौथा अध्याय है। श्री गौरांग चैतन्य महाप्रभु जिन्हें हम लोग बोलते हैं, तो बचपन में चैतन्य महाप्रभु इनका नाम नहीं था, इनको बोलते थे गौरांग या निमाई या विश्वंभर, ये नाम थे, चैतन्य नाम नहीं था, है ना। तो श्री गौरांग अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं जब बालक हैं, अनेक प्रकार की। और विद्या आरंभ का समय आया तो मिश्र जगन्नाथ ने विश्वंभर के हाथ में खड़िया देने का अनुष्ठान किया। कुछ दिन बाद सब बंधु बांधव मिलकर कर्ण छेदन किया और मुंडन करके शिखा रखी। अब ये विश्वंभर जो है एक बार देखने मात्र से अक्षरों को लिख लेते थे, एक बार दिखा दो ये अक्षर लिखना है तो खड़िया से जो है वो लिख देते हैं, देखा अक्षर को देख करके ही अपने आप लिख लेते हैं बिना किसी की सहायता के। बच्चे को तो हाथ पकड़ कर लिखवाया जाता ना अक्षर, कोई बच्चा जो है अपने हाथ से अक्षर नहीं लिख पाता है, हाथ पकड़ करके लिखवाया जाता है। लेकिन विश्वंभर का जो है हाथ पकड़े बिना ही वो देख करके अक्षर को लिख लेता था। ये देखकर सब लोग बड़े विस्मित हुए, दो तीन दिन में सब अक्षर और व्यंजन लिखना शुरू कर दिया। दो तीन दिन में बालक ने सब अक्षर और व्यंजन लिखना शुरू कर दिया, है ना। और निरंतर कृष्ण नामों को ही पटिया पर लिखते रहते, पट्टी होती ना, पट्टी है खड़िया से जो है पट्टी में लिखते थे, तो कृष्ण के नामों को लिखते रहते और बोलते रहते थे राम कृष्ण मुरारी मुकुंद बनमाली, दिन रात उन्हीं को लिखते थे और पढ़ते थे, है ना। जब बालकों के साथ पढ़ते हैं नवद्वीप में वो बालक बड़े भाग्यशाली, कितनी मधुर वाणी में बोलते थे का खा गा घा, उसे सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गौरांग कभी अद्भुत लीला करते थे और कोई भी चीज को मांग बैठे, कुछ पता नहीं किस समय क्या मांगने लगे, और जब मांगे आकाश में किसी पक्षी को उड़ता देख करके उससे मांगते मुझे वो चाहिए, अब कौन पकड़ेगा, पक्षी उड़ रहा है आकाश में मांग रहे हैं, मांगते और ना प्राप्त करके रोने लगते और भूमि पर लौटने लगते हैं। थोड़ी देर बाद आकाश के चांद तारों के लिए हट करने लगे और रोते रोते हाथ पांव और छालने लगते थे। सब बातों का समाधान यही था, हरिनाम उच्चारण करने लगे तो चुप हो जाते, हरिनाम कीर्तन करें तो चुप हो जाते हैं, सब लोग ताली बजाकर हरी हरी बोलते तो चंचलता रोना छोड़ करके स्थिर हो जाते। बालक गौर सुंदर को प्रसन्न करने के लिए सब लोग श्री हरि नाम उच्चारण करने लगते, जगन्नाथ का घर वैकुंठ धाम बन गया था। अब बालक को अगर चुप रखना है कि रोए नहीं तो निरंतर हरिनाम लेना ही पड़ेगा, तो उन्होंने ऐसी स्थिति बना दी कि हरिनाम बंद किया और बालक ने रोना शुरू किया, तो फिर क्या करना है, अखंड हरिनाम कर। एक दिन सब निरंतर हरिनाम बोल रहे हैं तो भी गौरांग रोते ही रोते जा रहे हैं। ये जो है एक अद्भुत लीला, ये पहली बार ऐसा हुआ, रिकॉर्ड तोड़ दिया। हरिनाम मैं तो मतलब कोई ऐसा मतलब और कोई कारण नहीं होता था रोने का, चाहे जितना भी मतलब कारण हो रोने का, लेकिन हरिनाम हो तो रोना बंद कर देते, लेकिन आज पहली बार ये पहली बार ऐसी बात है कि सब लोग हरिनाम ले रहे हैं इन तो भी बालक रो रहा है, रोता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि श्री चैतन्य ने सबसे पहले तो हरिनाम की शिक्षा दी कि हरिनाम हमें अपने जीवन हरिनाम हमेशा बोलना है, लेकिन हरिनाम के साथ में एक दूसरी शिक्षा जो भगवान देना चाहते हैं वो क्या है, एकादशी। आप हरिनाम जब करते हैं तो फिर अगला कदम है क्या, एकादशी। एकादशी को अन्न नहीं खाना, है ना। तो सब कहने लगे देखो बेटा सुनो हम हरि नाम गाते हैं, तुम सुंदर नृत्य करो, किंतु किसी की बात नहीं सुनते हैं। रोते ही जा रहे हैं, सब पूछ रहे हैं बेटा तू क्यों रो रहा है, तू क्या चाहता है, वही वस्तु लाकर देंगे, तू रो मत। एक दिन सब हरि बोले अनुचन, तथापि प्रभु पुनः करे ने क्रंदन। सब बोले न सुने बाप रे ने माई, भाल करि नाचे हरि नाम गाई। न सुने वचन कारो कराए क्रंदन, सब बोले न बाप कांद की करण। अब बालक ने कहा, यदि आप मेरे प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो आप तुरंत जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत के घर में जाओ। अभी वो छोटा सा बालक क्या बोल रहा है, बहुत आश्चर्य की बात है। एक छोटा सा बालक क्या बोल रहा है, रो रहा है, बहुत देर से रो रहा है ना। जब सबने पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें, क्यों रो रहे हो, हरे नाम से भी चुप नहीं हो रहे, क्या कारण है ना, तो बालक क्या कहता है कि मेरे प्राणों की रक्षा अगर करना है तो तुरंत जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत के घर में जाओ, वहां मेरी अभीष्ट वस्तु है जिसके लिए मैं रो रहा हूं। आज एकादशी व्रत का दिन है, देखो बालक बता रहा है कि आज एकादशी व्रत का दिन है। इसका मतलब है कि जगन्नाथ मिश्र घर में एकादशी नहीं मनाई जाती थी, और कारण कुछ है, ऐसे मूर्ख लोग थे जिन्होंने कुछ ऐसी रूढ़ियां बना दी थी कि विधवा स्त्रियां ही एकादशी व्रत करेंगी, विधवा स्त्रियों के अलावा एकादशी व्रत कोई नहीं करेगा। तो इनके घर में भी कोई एकादशी व्रत नहीं करता था। और बालक क्या चाहता है, भगवान साक्षात धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। बालक है तो अभी साक्षात भगवान है, धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, तो हरिनाम का कीर्तन तो कराते ही है। अब हरिनाम के कीर्तन के साथ साथ अब वो क्या चाहते हैं, एकादशी का भी, एकादशी का भी व्रत। इसलिए बालक क्या बोला, आज एकादशी व्रत का दिन है। उन दोनों ने श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार किया है, उन दोनों ने श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार किया है। कैसा भोग तैयार किया है, एकादशी का, उन्होंने एकादशी का भोग तैयार किया है। वो नैवेद्य यदि मैं खाने के लिए प्राप्त करूंगा तभी मैं स्वस्थ होकर विचरूंगा। तो भगवान का ये संदेश है कि एकादशी के दिन जरूरत नहीं है कि आप भूखे रहें, लेकिन अन्न को छोड़ करके कई प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं, एकादशी के दिन आप खा सकते हो। तो भगवान ये दिखा रहे हैं कि मुझे वो चाहिए, है ना। तो भगवान ने इतना सरल बनाया है कलयुग में धर्म को कि एकादशी के दिन जरूरत नहीं कि आप निर्जल करो, निराहार करो, है ना, और उससे जो है आपके दिमाग में फिर तनाव पैदा हो। लेकिन भगवान ये बताना चाहते हैं कि हरिनाम जैसे सरल है, उसी प्रकार का एकादशी का व्रत भी सरल है। भगवान ने एकदम सरल बना दिया। एक छोटा सा बालक क्या कह रहा है कि उन्होंने जो एकादशी का विशेष जो बनाया है व्यंजन, तो वो मुझे खाने के लिए चाहिए ना। ये बात असंभव जानकर सची माता मन में बड़ी दुखी होकर बोली, देखो ये ऐसी बात कहेगा जो लोक और वेदों में नहीं है, कोई भगवान का भोग भी खाने को मांगता है। लेकिन इसमें जो दूसरी बात है वो ये भी थी कि बालक कहता है कि बिना भोग लगाए लाओ मैं खाऊंगा, है ना। तो उस माता सची बोली कि देखो उन्होंने अगर बनाया है तो भगवान को पहले भोग लगाएंगे, है ना। लेकिन ये बालक क्या कहता है कि नहीं मुझे खिलाओ, है ना। तो सची माता कहते हैं कि देखो कैसे ये हो सकता है कि वे जो है अपने घर में भगवान को भोग ना लगाएं। तो श्री गौर के वचन सुनकर सब हंसने लगे, तब श्री गौर फिर रोने लगे, फिर से रोने लगे। सबने कहा वही ला देते हैं, तुम रो नहीं। प्रभु बोले यदि मोर प्राण रक्षा चाही तब झट दुई ब्राह्मणेर घर जाई। जगदीश पंडित हिरण्य भागवत एई दुई स्थाने अमर आछे अभिमत। एकादशी उपवास आज से दोहार विष्णु लागे करियात यत उपहार। क्या एकादशी उपवास आज से दोहार उन दोनों का है ना। शेषाव नैवेद्य दिखाई वारे पांग तबे मोहि सुस्त होई हाटिया बेड़ाम। असंभव सुनिया जाना निकर खेन हेन कथा कहे जे नहीं लोक वेद। सबे हासे ने सुने शिशुर बचन सबे बोले देवे बाप संबर क्रंदन। वे दोनों ब्राह्मण परम वैष्णव थे, श्री जगन्नाथ के साथ एक प्राण थे। उनके पास जाकर जब श्री गौरांग की बात कही गई तो उसे सुनकर वे अति संतुष्ट हुए और सारा शरीर पुलकित हो उठा। देखो ये है भक्त, ऐसे होते हैं भक्त। नहीं तो वो क्या कहते हैं, अरे बच्चा रो रहा है तो हम क्या भगवान को भोग ना लगाएं? हैं, तुम्हारे घर में अगर बच्चा रो रहा है तो उसको आप फुसलाओ, समझाओ, बुझाओ, जो कुछ भी है। ये कैसे हो सकता है कि हम भगवान को भोग ना लगाएं और बच्चे को खिला दें? लेकिन नहीं, वे भक्त हैं और जन्म जन्म के भक्त हैं, इसलिए उनको ऐसी बुद्धि मिली कि उनको समझ में आ गया कि कृष्ण ही मांग रहे हैं, कृष्ण ही मांग रहे हैं। उस बालक के अंदर कृष्ण है जो मांग रहे हैं। तो ये बालक को कृष्ण ही समझे, क्यों? क्योंकि बालक नहीं चाहता कि कोई उन्हें कृष्ण समझे, क्योंकि बालक को अगर कृष्ण समझेंगे तो बालक की पूजा करने लगेंगे, स्नेह कैसे करेंगे? तो बालक तो स्नेह पाना चाहता सबका, इसलिए ये हिरण्य भागवत जगदीश पंडित ने कैसा समझा कि बालक के शरीर में कृष्ण है। बालक तो कृष्ण नहीं है, ये बालक शरीर में कृष्ण है, हैं? और कृष्ण ही इस बालक के मुख से ऐसा बोल रहे हैं, है ना। इस तरह से बालक के प्रति उनका स्नेह और बढ़ गया, है ना। तो वे क्या बोले, दोनों भाई कहने लगे ये तो महाअद्भुत बात है, ऐसी बातें बालक जानते हो, ऐसा कभी नहीं सुना। उसने ये कैसे जान लिया कि आज एकादशी व्रत है? बालक ने कैसे जान लिया कि आज एकादशी का व्रत है? अगर घर में कोई एकादशी व्रत नहीं करता है तो बालक को कैसे पता एकादशी व्रत है? और फिर हमने नैवेद्य बनाया है एकादशी का, वो बालक को कैसे पता चला? सभी लोग जो है एकादशी के दिन अन्न खाते हैं, लेकिन हमने एकादशी के ही आइटम बनाए हैं, बालक को कैसे पता चला? एकादशी का व्रत भी बालक को कैसे पता चल सकता है? अगर घर में कोई एकादशी का व्रत नहीं करता है तो बच्चे को कैसे पता चलेगा कि आज एकादशी है? और फिर हमारे घर में एकादशी का ही आइटम बना है, बालक को कैसे पता चला? वो कह रहा है मुझे वो खाना। एकादशी को बालक अन्न नहीं खाना चाहता है ना। अब हम समझ गए कि बालक अति रूपवान है, इसके शरीर में श्री गोपाल का अधिष्ठान है, इसके शरीर में श्री नारायण ही क्रीड़ा कर रहे हैं, वही इसके हृदय में विराजमान होकर ऐसी बातें बोल रहे हैं। उनको समझ आएगा कि भगवान ही है इस शरीर में, है ना। पारम वैष्णव सही विप्र द्वैजन जगन्नाथ मिश्र सहे आभेद जीवन। सुनिया से सूर्य वाक्य द्वै विप्र वर संतोष पूर्ण तेहला सर्व कलेवर। द्वै विप्र बोले महा अद्भुत कहानी शिशुर ए मत बुद्धि कबो नाही सुनी। के मत जाने ले आज श्री हरि बासर के मत वह जाने ले नैवेद्य बहुतर। बुझिलांगे से सुपारा में रूपवान अतएव ए देह गोपाल अधिष्ठान। ऐसे सुर देह क्रीड़ा करे नारायण हृदय बस ऐसे ही बोलाए वचन। ये समझकर दोनों ब्राह्मण सब नैवेद्य इनके पास ले आए। क्या जितना था सब बना बना करके पूरा भर के थाल ले आए बालक के पास। थोड़ा नहीं लाए, बच्चा कितना खाएगा? बच्चा मांग रहा है कि सब लाओ, बच्चा मांग रहा है सब लाओ मेरे सामने, है? मेरे प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो सब को लाओ मेरे सामने। और ये दोनों भाई जो है पूरा भर करके ले आए, जितना बनाया सब कसम ले आए बालक को, कि भगवान भगवान को भोग लगेगा, है ना। और दोनों ब्राह्मण ने कहा लो बेटा खाओ, ये श्री कृष्ण को ही अर्पित हो गया, तुम्हारे खाने से श्री कृष्ण अर्पित हो गया। हाँ, श्री कृष्ण की कृपा होने पर ही ऐसी बुद्धि हुआ करती है। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांदिते, ऐसा बुद्धि योग तो कृष्ण ही देते हैं जिन पर कृपा करें, ऐसा बुद्धि योग उनको कृष्ण ने दिया कि वो दे दिया बालक को कि भगवान को भोग लग गया। जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत इन दोनों पर कृष्ण कृपा थी, तभी उनमें ऐसी बुद्धि का उदय हुआ। विशेषता कृपा होने पर ही श्री गौर को साक्षात श्री कृष्ण अनुभव किया जा सकता है। भक्ति के बिना श्री चैतन्य देव को कोई नहीं जान सकता, उनके लोम कूप में अनंत ब्रह्मांड निवास करते हैं। माने भावे दोए विप्र सर्व उपहार अनया दिले न करिहार अपार, दोए विप्र बोले बाप खाओ उपहार सकल कृष्ण रसाथ हाइले आमार, कृष्ण कृपा हाइले ए मोती बुद्धि है दास बिनु अन्य रे बुद्धि कबु नय, जारी कृपा है तान से जानय। ऐसे सर्वेश्वर भगवान एक ब्राह्मण बालक के रूप में लीला कर रहे हैं, जो उनके जन्म जन्म के दास हैं वही इन लीलाओं को नेत्रों से देख पाते हैं। जगदीश पंडित भी जन्म जन्म के दास हैं, तभी बालक रो रहा है कि इन्होंने जो बनाया है वो मुझे खिलाओ, अगर मेरे प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो जगदीश पंडित ने जो बनाया अपने घर में वो मुझे खिलाओ, है ना। और नैवेद्य के पाने पर सबको संतोष हुआ और थोड़ा थोड़ा करके गौर प्रभु ने वो सब नैवेद्य खा लिया। गौर अपने भक्त के उपहार को आनंद पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनकी इच्छा पूर्ति होने पर सब चंचलता या रोना बिगड़ना बंद हो गया। इच्छा पूरी हुई तो सब चंचलता रोना बिगड़ना बंद हो गया, सबने आनंद से भरकर हरी हरी ध्वनि की, श्री गौर खाते हैं और कीर्तन में नाचते भी जाते हैं, खाते खाते नाचते भी हैं। क्या शिक्षा देते हैं कि एकादशी के दिन भी खाओ लेकिन अन्न मत खाओ, है और नाचो कीर्तन करो। कितना तो भूमि पर फैल रहा था और कितना किसी किसी के शरीर पर पड़ रहा था, खा रहे हैं बालक तो गिराते भी हैं, जमीन जमीन गिराते हैं और दूसरों के शरीर में भी फेंकते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा शिव के स्वामी श्री गौर लीला करते हैं। भक्ति बिना चैतन्य गोसाई ना ये जानी अनंत ब्रह्मांड जार लोम कूपे सुनी, हे न प्रभु विप्र से स्वरूपे क्रीड़ा करे चक्षु भरी देखे जन्म जन्म रे किं करे। तो ये जो जगदीश पंडित हैं तो इनके बारे में गौर गणोदेश दीपिका में लिखा हुआ है कि ये दोनों भाई यानी जगदीश और हिरण्य, ये दोनों भाई पिछले जन्म में क्या थे, यज्ञ पत्नियां थे। मथुरा के कुछ ब्राह्मण जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ किया करते थे तो कंस के भय से मथुरा छोड़ करके यहां पर आए। ब्रजमंडल में आए कंस से डर करके, क्यों, कंस ने मथुरा में सब यज्ञ बंद करा दिए थे, कंस असुर था, भगवान का विरोधी था, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य हैं वो कंस ने अपने राज्य में मथुरा में बंद करा दिए। तो ये जो ब्राह्मण थे ये यज्ञ करना चाहते थे तो कंस के डर से ये लोग कहां पर आए, ब्रज मंडल में आए, यहां पर यज्ञ कर रहे हैं। उस समय भगवान कृष्ण बलदेव जी के साथ गौ में चराते हुए आए, तो कृष्ण के साथ जो सखा थे वे कृष्ण से बोले कि हे कृष्ण, हमको तो भूख बहुत सता रही, अब आप ही रक्षा करो, क्योंकि आप ही जब असुर हमें सताते हैं तो आप हमारी रक्षा करते हो, असुरों से रक्षा करते हो, तभी हमको एक असुर सता रहा है, और वो कौन सा असुर है? भूख। तो आप हमारी रक्षा करो। तो भगवान किसने सोचा कि क्या किया जा सकता है, तो भगवान ने कहा कि हाँ, यहां पास में कुछ ब्राह्मण लोग हैं जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, अगर आप जाएंगे कुछ अन्न मांगेंगे, लेकिन हमारा और बलदेव जी का नाम लेना, समझना चाहिए कि यज्ञ अगर कर रहे हैं कोई ब्राह्मण तो यज्ञ पूरे होने से पहले वो अन्न नहीं बांटते, यज्ञ की समाप्ति पर ही अन्न का वितरण किया जाता है। यज्ञ के बीच में अगर अन्न का वितरण कर दिया जाए तो वो जो है अपराध माना जाता है। लेकिन भगवान ने कहा था कि तुम मेरा और बलदेव जी का नाम बताना कि उन्होंने भोजन मांगा है, वे भूखे हैं, अपने लिए नहीं मांगना। तो जो सखा थे कृष्ण के, उन्होंने उसी तरह से समझा और उन ब्राह्मणों से ये मांगा कि समीप में ही भगवान कृष्ण हैं, बलदेव जी हैं, तो वे भूखे हैं और आप उनके लिए कुछ भोजन दे दीजिए। जबकि भूखे कौन थे? वे स्वयं भूखे थे, लेकिन कृष्ण बलदेव के लिए भोजन मांग रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि मेरा बलदेव जी का नाम लेकर के ही बात करना उनसे। तो ऐसे में जो ब्राह्मण हैं उन्हें समझना चाहिए था कि कृष्ण बलदेव अगर मांगे भोजन तो हर समय भोजन देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए जब भी मांगे, क्योंकि वे कौन है? पुराण पुरुष हैं, उन्हीं से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। लेकिन वे जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण थे वे अपना यज्ञ में लगे रहे और इनकी बात नहीं सुनी, इससे कितना अपमान होता है। आप किसी व्यक्ति से अगर बात करें और वो आपसे बात ना करे और काम में लगा रहे तो अपमान होता है ना। तो कृष्ण के सखाओं का बड़ा अपमान हुआ, कुछ बात भी नहीं की, क्षमा करो अभी नहीं, आप रुक जाओ, यज्ञ समाप्त हो जाए तब हम देंगे, कुछ तो बताएं, तो कुछ भी नहीं बता रहे। तो यज्ञ कार्य में लगे रहे और जो सखा थे श्री कृष्ण के वे कृष्ण के पास आ गए ये बताने के लिए कि आपने जैसा कहा था वैसा हमने किया, लेकिन उन ब्राह्मणों ने हमें भोजन नहीं दिया। तब कृष्ण ने उन सखाओं से कहा कि इस बार तुम लोग जाओगे तो बलदेव जी और मेरा नाम नहीं लेना, बल्कि नहीं क्षमा करना, अब कृष्ण ने जो है उनको कहा कि अब तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनको मेरा बलदेव जी का नाम बताना, तुम्हें जरूर तुम्हें भोजन देंगे। और कृष्ण के आदेश से जो कृष्ण के सखा थे इस बार कहाँ गए? उन्हीं स्त्रियों के पास गए। और उनकी स्त्रियों ने जब सुना कि अरे कृष्ण बलराम यहाँ पास में आए हुए हैं तो वे तो एकदम क्या हो गई, बिल्कुल चंचल हो गई कि अब तो हमें कृष्ण के और बलराम के दर्शन करना है। और इस तरह से जो है वे खुद ही भोजन के थाल भर भर करके ले आई, कृष्ण बलराम के पास ले आई। तो ये जो स्त्रियां जो अपने पतियों से बिना आज्ञा लिए कृष्ण बलराम के लिए प्रसाद भोजन मतलब लेके आई, तो ये उनका ये सबसे बड़ा लाभ हुआ, इसे सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। फिर यज्ञ करने की जरूरत क्या है और यज्ञ के मंत्रों को पढ़ने की जरूरत क्या है? अगर कृष्ण बलराम मांगे भोजन और आप जो आपके पास जो भोजन है हैं, तो कृष्ण बलराम को ना देकर के आप यज्ञ करते रहें, कितना बड़ा नुकसान है। साक्षात कृष्ण बलराम भोजन मांग रहे हैं। तो ये यज्ञ पत्नियां हैं जिनको कि भगवान ने ऐसी बुद्धि दी थी कि तुरंत ही कृष्ण की बात सुन करके वे भोजन के थाल भर भर करके ले आई। गीता में भगवान कहते सर्व धर्मान परित्यज्य मामे कम शरणं व्रज, सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ। तो उनका धर्म क्या था? पतिव्रत धर्म, अपने पतियों से आज्ञा लिए बिना वे भोजन नहीं ले जा सकती और वे स्वयं भी कहीं नहीं जा सकती, लेकिन अपने पतियों की आज्ञा के लिए बिना श्री कृष्ण के आदेश से उन्होंने भोजन भी उठा लिया और बिना पतियों से आज्ञा लिए कृष्ण के पास जा रही हैं। तो उन्हीं में से दो स्त्रियां ये गौर लीला में है, जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत है। तो इस बार भी वही स्थिति बनी। क्या कि पिछली बार ये जो पत्नियां थीं वे देख रही थी उनके पति जो है यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ करने के बाद फिर भोजन का वितरण करेंगे, लेकिन कृष्ण बलदेव के भेजे हुए जो सखा थे उन्होंने जब बताया कि कृष्ण बलदेव यहां पर आए हुए हैं, तो जैसे उनको सूचना मिली कि कृष्ण बलदेव आए हुए हैं तब तो सब कुछ है हमें देना है, कृष्ण बलदेव को देना है, ये सोच करके भोजन के थाल भर भर करके बने बिना पतियों से पूछे और वो चलेंगी। तो ऐसी बुद्धि भगवान ही दे सकते हैं किसी को। वे स्त्रियां बहुत कुलीन थी और ऊंचे ब्राह्मण परिवार में की थी, लेकिन उन्होंने अपना कोई गौरव नहीं रखा। अगर कृष्ण का आदेश है कि कृष्ण को भोजन देना है तो फिर हम कौन होते हैं कृष्ण के लिए नियम बनाने के लिए वाले। तो वही यज्ञ पत्नियां हिरण्य भागवत और जगदीश पंडित के रूप में प्रकट हुई और ये उनकी परीक्षा थी कि इस समय ऐसी स्थिति में वे क्या करें। उनके घर में जो है भगवान का मंदिर था, विष्णु मंदिर था, और विष्णु को भोग लगा करके ही वो खुद पाते थे, लेकिन इस बार जैसे ही उन्हें पता चला कि बच्चा रो रहा है और हमने जो बनाया उसको खाने के लिए रो रहा है, तो बच्चे को कैसे पता चल सकता है? नहीं, जो बच्चा रो रहा है वो सामान्य बच्चा नहीं हो सकता है, वो तो साक्षात भगवान है। तो यही जो है मतलब विशेष घटना है आज के दिन की कि जगदीश पंडित ने बिना अपने अधिकारियों से पूछे भगवान कृष्ण को देने के लिए जो कुछ मिला सो लेकर के चल पड़े। तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए और इसके लिए हमें जगदीश पंडित से कृपा प्राप्त करनी चाहिए कि जगदीश पंडित के ऊपर जैसे आपने कृपा की है तो वैसी कृपा आप मेरे ऊपर भी करिए, ताकि मैं भी जगदीश पंडित के रास्ते में कुछ चलना शुरू कर सकूं, है ना। तो आज हमने जीव गोस्वामी के बारे में कुछ बातें बताई, दूसरी जगदीश पंडित के बारे में कुछ बातें बताई। आज का दिन बहुत पवित्र है। आज के दिन इन दोनों महापुरुषों की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, कोई प्रश्न है किसी का? आपका? हाँ, आप हैंड माइक है लो और थोड़ा आगे आ जाओ।
जैसे आपको पता है कि ये जीव गोस्वामी जी लास्ट मंजरी है, तो इनको खुद ही ओपन करते हैं या
नहीं? जीव गोस्वामी का भी आज तिरुभाव दिवस है, जीव गोस्वामी का आज तिरुभाव दिवस है, तो तिरुभाव दिवस हम कैसे मनाते हैं? आज के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा अपना, है ना, तो वो देखना पड़ेगा कि किस सन में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। हाँ, अच्छा, आपका प्रश्न ये है कि बिलास मंदिर जो बताया, ये कैसे पता चला कि वो बिलास मंदिर है? ऐसा है कि जो सिद्ध महात्मा होते हैं तो उनको अपने विषय में पता चल जाता है कि वे भगवान की सेवा में क्या हैं। ये कृष्ण की भक्ति से जब हम शुद्ध हो जाते हैं तब हमें अपने तो जब हम कृष्ण की भक्ति से शुद्ध हो जाते हैं तब हमें पता चलता है, अपने बारे में पता चलता है कि हम कौन हैं, ठीक है ना। तो अपना जो स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। तो ऐसे जो महात्मा हैं वो अगर चाहें तो अपने बारे में बता भी सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, उनके जीवन काल, उनका उनके जीवन काल का भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से ये बड़ी उम्र के हैं, ये जगन्नाथ मिश्र के उम्र के हैं, चैतन्य महाप्रभु के पिता की उम्र के हैं ये। हैं? हाँ हाँ, वो तो खैर होगा, ये हमने जो पढ़ के सुनाई किताब तो ये तो बहुत संक्षेप में है, नहीं तो कुछ दूसरे स्थानों में मिल सकता है इनके बारे में ज़्यादा विवरण। तो इनके जीवन चरित्र में और भी कई घटनाएं हैं जिनकी हमने चर्चा नहीं की, इस किताब में तो जितना था उतना ही मैंने सुना है, ठीक है ना। श्री जगदीश पंडित तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की, श्री जीव गोस्वामी तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौरताई की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री सठ गोस्वामी वृंद की, श्री श्री प्रहलाद सिंह देव की, श्री हरि बोल, हरे कृष्ण।